नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा।
अर्टिंग इन एटसी बिजनेस फॉर डमीज, केट शूप और केट गैट्सकी की व्यावहारिक ई कॉमर्स मार्गदर्शिका है। इसका चौथा संस्करण वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ और यह एटसी पर हस्त निर्मित विंटेज तथा अनुमत क्राफ्ट सामग्री बेचने की प्रक्रिया समझाता है। पुस्तक का उद्देश्य केवल दुकान खोलने के तकनीकी चरण गिनाना नहीं है, यह उत्पाद प्रस्तुति, मूल्य, संचालन, ग्राहक संबंध और विस्तार को एक छोटे व्यवसाय की परस्पर जुड़ी जिम्मेदारियों के रूप में रखती है। लेखक एटसी के नियमों और मंच की कार्यप्रणाली से शुरुआत करते हैं, फिर स्टोर फ्रंट, शॉप मैनेजर, नीतियों, लिस्टिंग, भुगतान और ऑर्डर पूर्ति तक बढ़ते हैं। अद्यतन संस्करण में उत्पादों की आकर्षक तस्वीरें और छोटे वीडियो, खोज के लिए लिस्टिंग अनुकूलन तथा प्लेटफॉर्म के बदले हुए उपकरणों पर विशेष ध्यान है। इसलिए यह पुस्तक रचनात्मक काम को ऑनलाइन बेचने के इच्छुक शुरुआती व्यक्ति के लिए एक संरचित संदर्भ है, न कि जल्दी धन कमाने का दावा करने वाली पुस्तक। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले एटसी की पात्रता और नियमों से सही व्यवसाय मॉडल चुनना। पुस्तक का पहला उपयोगी आधार यह है कि एटसी को हर प्रकार के ऑनलाइन खुदरा व्यापार के लिए सामान्य बाजार नहीं माना जा सकता। विक्रेता को पहले समझना होता है कि उसका उत्पाद मंच की अनुमत श्रेणियों में आता है या नहीं। हस्त निर्मित वस्तु, विंटेज वस्तु और कुछ क्राफ्ट सप्लाई एटसी की पहचान से जुड़ी श्रेणियां हैं, इसलिए दुकान खोलने से पहले उत्पाद की उत्पत्ति, निर्माण में विक्रेता की भूमिका और विवरण की सत्यता स्पष्ट रखना आवश्यक है। यह जांच बाद में होने वाले नीतिगत विवाद, लिस्टिंग हटने और ग्राहक असंतोष की संभावना घटाती है। पुस्तक निषिद्ध वस्तुओं और हाउस रूल्स की समीक्षा को शुरुआती प्रशासनिक काम मानती है, न कि मामूली कानूनी औपचारिकता। यह दृष्टि खास तौर पर उन विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो बाहरी निर्माण सहयोग लेते हैं। उन्हें उत्पादन व्यवस्था को पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और प्लेटफॉर्म की वर्तमान नीतियों के अनुरूप रहना चाहिए। नियमों की समझ उत्पाद चयन को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, केवल प्रचलन देखकर वस्तु जोड़ने के बजाय विक्रेता को अपने कौशल, लागत, आपूर्ति की निरंतरता और विशिष्टता देखनी चाहिए। इस तरह पुस्तक दुकान की शुरुआत को रचनात्मक अभिव्यक्ति और अनुपालन दोनों का संतुलन बनाने की प्रक्रिया बताती है। दूसरा, स्टोर फ्रंट, शॉप मैनेजर और नीतियों से भरोसेमंद खरीद अनुभव बनाना। दूसरा, केंद्रीय विषय दुकान को एक सुसंगत डिजिटल स्टोर फ्रंट की तरह व्यवस्थित करना है। एटसी पर खरीदार उत्पाद के साथ साथ दुकान की विश्वसनीयता का भी मूल्यांकन करता है, इसलिए नाम, बैनर, परिचय, उत्पाद श्रेणियां और दुकान की भाषा मिलकर ब्रांड की स्पष्ट छवि बनाते हैं। पुस्तक शॉप मैनेजर को केवल नियंत्रण पैनल नहीं बल्कि रोजमर्रा के संचालन का केंद्र मानती है, जहां लिस्टिंग, ऑर्डर, आंकड़े और दुकान संबंधी व्यवस्थाएं संभाली जाती हैं। यह संरचना विक्रेता को बिखरे हुए निर्णयों के बजाय नियमित प्रक्रिया बनाने में सहायता देती है। दुकान की नीतियां इस भरोसे का दूसरा आधार है। भुगतान, प्रसंस्करण समय, शिपिंग, वापसी, विनिमय और कस्टम ऑर्डर के बारे में अस्पष्टता खरीदार के प्रश्न बढ़ाती है और विवाद की स्थिति कठिन बनाती है। स्पष्ट नीतियां ग्राहक की अपेक्षा पहले से तय करती हैं, साथ ही विक्रेता को लगातार एक जैसे निर्णय लेने का आधार देती हैं। पुस्तक की व्यावहारिक सीख यह है कि नीति अत्यधिक कठोर या कानूनी भाषा से भरी होने की जरूरत नहीं, लेकिन वह वास्तविक संचालन क्षमता से मेल खानी चाहिए। यदि उत्पाद बनाने में समय लगता है तो उसे तुरंत भेजे जाने वाले माल की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। सुव्यवस्थित स्टोर फ्रंट और यथार्थवादी नीतियां मिलकर पेशेवरता स्थापित करती हैं। तीसरा, तस्वीर, वीडियो और विवरण के माध्यम से लिस्टिंग को खरीद योग्य बनाना। पुस्तक का विपणन संबंधी व्यावहारिक पक्ष उत्पाद लिस्टिंग की गुणवत्ता पर केंद्रित है। ऑनलाइन खरीदार वस्तु को छू या सीधे जांच नहीं सकता, इसलिए तस्वीरें, छोटे वीडियो और विवरण उसके निर्णय के प्रमुख प्रमाण बनते हैं। आकर्षक छवि का अर्थ केवल सुंदर पृष्ठभूमि नहीं है, छवियों को आकार, बनावट, रंग, उपयोग और पैमाने के बारे में पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए। कई कोणों से दिखाना और वस्तु को उपयोग के संदर्भ में रखना खरीदार की अनिश्चितता घटा सकता है। छोटा वीडियो भी उत्पाद की गति, चमक, संरचना या वास्तविक अनुपात को स्पष्ट करने में सहायक हो सकता है। विवरण का काम तस्वीर दोहराना नहीं बल्कि सामग्री, माप, निर्माण विधि, देखभाल, वैयक्तिकरण विकल्प और भेजने की अपेक्षित अवधि बताना है। पुस्तक खोज योग्यता के लिए शीर्षक और लिस्टिंग भाषा पर भी ध्यान देती है। इसका तर्क यह है कि ग्राहक जिन शब्दों से खोजता है उन शब्दों और उत्पाद की वास्तविक विशेषताओं के बीच स्वाभाविक संबंध होना चाहिए। भ्रामक या असंगत शब्द अल्पकालिक क्लिक तो ला सकते हैं, पर गलत अपेक्षाएं और कमजोर रूपांतरण पैदा करते हैं। अच्छी लिस्टिंग इसलिए रचनात्मक प्रस्तुति, तथ्यात्मक स्पष्टता और खोज में मिलने की क्षमता का संयुक्त काम है। यह एटसी विक्रेता के लिए विज्ञापन, सूचना पत्र और बिक्री संवाद तीनों की भूमिका निभाती है। चौथा, मूल्य निर्धारण, भुगतान, सुरक्षा और शिपिंग को लाभ के साथ जोड़ना। रचनात्मक उत्पाद बेचने में बिक्री मूल्य को केवल सामग्री लागत से तय करना पर्याप्त नहीं होता।
पुस्तक व्यवसाय संबंधी अध्यायों में यह संकेत देती है कि विक्रेता को निर्माण समय, पैकेजिंग, प्लेटफॉर्म शुल्क, भुगतान प्रसंस्करण,
शिपिंग और संभावित प्रचार खर्च जैसे तत्वों को साथ देखना चाहिए, अन्यथा अधिक ऑर्डर भी लाभ के बजाय काम का बोझ बन सकते हैं।
मूल्य निर्धारण का उद्देश्य प्रतिस्पर्धियों की नकल नहीं बल्कि उत्पाद की वास्तविक लागत और ग्राहक को दिए जा रहे मूल्य के बीच टिकाऊ संतुलन बनाना है।
भुगतान व्यवस्था में बैंक विवरण, बिलिंग और भुगतान प्राप्ति की आवृत्ति जैसे निर्णय प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण है।
उपलब्ध क्षेत्रों में एटसी पेमेंट्स खरीदारों को कई भुगतान विकल्प देता है, पर विक्रेता को अपनी पहचान और वित्तीय जानकारी सही रखनी होती है।
खाते की सुरक्षा के लिए दो चरणीय प्रमाणीकरण जैसी सावधानियां दुकान और भुगतान दोनों की रक्षा करती हैं।
ऑर्डर के बाद पैकेजिंग, भेजने की समय सीमा और ट्रैकिंग का स्पष्ट प्रबंधन ग्राहक अनुभव का हिस्सा है।
कर संबंधी दायित्व भी विक्रेता के स्थान और बिक्री के अनुसार बदलते हैं, इसलिए पुस्तक की सामान्य दिशा को स्थानीय कर सलाह का विकल्प नहीं मानना चाहिए।
मुख्य सीख यह है कि वित्त, सुरक्षा और पूर्ति को रचनात्मक कार्य से अलग नहीं किया जा सकता।
इन्हीं व्यवस्थाओं से दुकान विश्वसनीय और दीर्घकालिक बनती है।
अंत में ग्राहक सेवा, समुदाय और मापनीय प्रचार से दुकान का विस्तार।
पुस्तक एटसी दुकान को लिस्टिंग प्रकाशित करके निष्क्रिय छोड़ देने का मॉडल नहीं मानती।
ग्राहक सेवा में समय पर उत्तर देना, ऑर्डर की स्थिति बताना, समस्या आने पर स्पष्ट संवाद करना और नीतियों को लगातार लागू करना शामिल है।
विशेषकर हस्तनिर्मित और वैयक्तिकृत वस्तुओं में खरीदार की अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं।
इसलिए कस्टम ऑर्डर लेते समय डिजाइन, मूल्य, समय सीमा और स्वीकृति के चरण लिखित रूप में स्पष्ट करना उपयोगी है।
इससे विक्रेता बिना तय दायरे के अतिरिक्त काम करने से बचता है और खरीदार को प्रक्रिया समझ में आती है।
विस्तार के लिए पुस्तक दुकान के आंकड़ों और बाजार संकेतों को देखने की सलाह देती है।
किन लिस्टिंग को देखा जा रहा है, किन से ऑर्डर आ रहे हैं और कौन से उत्पाद या मौसम मांग बढ़ाते हैं, ऐसे संकेत अगली प्राथमिकताएं तय करने में मदद करते हैं।
प्रचारित लिस्टिंग तथा सोशल मंचों पर उपस्थिति उपयोगी हो सकती है, लेकिन उनका मूल्य तभी है जब संदेश दुकान की विशिष्ट शैली और लक्षित ग्राहक से जुड़ा हो।
केवल अधिक दृश्यता अपने आप बिक्री की गारंटी नहीं देती। एटसी समुदाय, समाचार और मंच के बदलावों पर नजर रखना भी इसीलिए महत्वपूर्ण है कि विक्रेता नियमों, उपकरणों और ग्राहक व्यवहार के साथ अपने तरीके अद्यतन कर सके।
इस विषय में पुस्तक का जोर संबंध, प्रतिक्रिया और मापन पर आधारित क्रमिक वृद्धि पर है।
निष्कर्ष में स्टार्टिंग एन एटसी बिजनेस फॉर डमीज उन कलाकारों, कारीगरों, डिजाइनरों,
विंटेज वस्तुओं के क्यूरेटरों और छोटे उद्यमियों के लिए सबसे उपयोगी है जो एटसी को गंभीर बिक्री माध्यम की तरह समझना चाहते हैं।
यह विशेष रूप से शुरुआती विक्रेता को लाभ दे सकती है क्योंकि वह दुकान खोलने के उत्साह में नियम, लागत, शिपिंग, सुरक्षा और ग्राहक अपेक्षाओं जैसे कम आकर्षक लेकिन निर्णायक पक्षों को नजरअंदाज कर सकता है।
पहले से सक्रिय विक्रेता भी लिस्टिंग प्रस्तुति, दुकान नीतियों, संचालन और प्रचार की समीक्षा के लिए इसे संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
पुस्तक की व्यावहारिक शक्ति इसकी क्रमबद्धता है। यह उत्पाद की पात्रता से शुरू होकर स्टोर फ्रंट, फोटो और विवरण, ऑर्डर पूर्ति, ग्राहक सेवा और वृद्धि तक एक ही व्यवसाय प्रणाली के घटक जोड़ती है।
अनेक सामान्य ऑनलाइन बिक्री पुस्तकों के विपरीत इसका फोकस एटसी के विशिष्ट वातावरण, उसके नियमों और उसके विक्रेता उपकरणों पर है।
सहलेखक केट गैट्सकी का लंबे समय का एटसी विक्रय अनुभव इस विषय को वास्तविक दुकान संचालन के निकट रखता है।
फिर भी पाठक को प्लेटफॉर्म की नीतियां, शुल्क, भुगतान उपलब्धता और कर नियम समय के साथ बदलने पर सीधे आधिकारिक स्रोतों से जांचने चाहिए।
पुस्तक रणनीतिक निर्णय का विकल्प नहीं बल्कि निर्णय लेने के लिए व्यवस्थित आधार देती है।
इसी कारण यह रचनात्मक वस्तु को टिकाऊ ऑनलाइन व्यवसाय में बदलने की प्रक्रिया समझने वाली उपयोगी प्रारंभिक मार्गदर्शिका है।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं केट शूप, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं।
किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।